माधव कुंज बिहारी
माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज
जन वल्लभ गिरिवर नित्य गौर हरि की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक?
33।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 13वां अध्याय श्लोक संख्या 33। 32 नहीं है, 32 में कोई तात्पर्य नहीं है।
बत्तीस
हो गया
नहीं,
तो 32 भी होना है ना। ऊपर कौन सा लिखा है?
33।
तो 32 मैं अकेले पढ़ता हूँ। तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप, इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञपुक्। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपको कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। 33। तथा स्वभाग धेयान्ति धेयानि,
तथा स्वभाग धेयानि
गृहीष्यन्ति दिवौकसः,
गृहीष्यन्ति दिवौकसः
यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्,
यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्
अपत्याय हरिर्वृतः,
अपत्याय हरिर्वृतः
तथा स्वभाग धेयानि,
तथा स्वभाग धेयानि
गृहीष्यन्ति दिवौकसः,
गृहीष्यन्ति दिवौकसः
यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्,
यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्
अपत्याय हरिर्वृतः,
अपत्याय हरिर्वृतः
तथा स्वभाग धेयानि,
तथा स्वभाग धेयानि
गृहीष्यन्ति दिवौकसः,
गृहीष्यन्ति दिवौकसः
यद्यज्ञः पुरुषः साक्षात्,
यद्यज्ञः पुरुषः साक्षात्
अपत्याय हरिर्वृतः,
अपत्याय हरिर्वृतः
तथा स्वभागधेयानि,
तथा स्वभागधेयानि
गृहीष्यन्ति दिवौकसः,
गृहीष्यन्ति दिवौकसः
गृहीष्यन्ति निग्रह
ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः, यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्,
यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्
अपत्याय हरिर्वृतः,
अपत्याय हरिर्वृतः
तथा स्वभागधेयानि,
ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः,
यद्यज्ञपुरुषः साक्षात्
अपत्याय हरिर्वृतः
तथा
स्वभागधेयानि,
गृहीष्यन्ति
दिवौकसः,
यद्यज्ञपुरुषः
साक्षात्
अपत्याय
हरिर्वृतः
तथा
तत्पश्चात्
स्वभागधेयानि यज्ञ में अपने अपने भाग,
यज्ञ में अपने अपने भाग
ग्रहिष्यन्ति,
ग्रहिष्यन्ति
ग्रहण करेंगे,
ग्रहण करेंगे
दिवौकसः,
दिवौकसः
समस्त देवता,
समस्त देवता
यत्
यत्
क्योंकि,
क्योंकि
यज्ञ पुरुषः,
यज्ञ पुरुषः
समस्त यज्ञों का भोक्ता,
समस्त यज्ञों का भोक्ता
साक्षात्,
साक्षात्
प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष
अपत्याय,
अपत्याय
पुत्र के लिए,
पुत्र के लिए
हरिः,
हरिः
भगवान,
भगवान
वृतः,
वृतः
आमंत्रित किया जाता है,
आमंत्रित किया जाता है।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तात्पर्य, जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता है, और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में अपना भाग उन्हें मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ देवताओं को नहीं वरन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त किए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च उपनीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ ये प्रसंग चल रहा है कि महाराज अंग ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के बाद भी और उनके अंदर कोई दोष न होने के बाद भी उनके कोई भी पाप इस जन्म में नहीं करने के बाद भी देवतागण यज्ञ के जो फल होते हैं उसके अपना अपना भाग स्वीकार करने के लिए नहीं आए। जब नहीं आए तो राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसे क्यों, क्या मैंने कोई मेरे अंदर कोई दोष है? तो ब्राह्मणों ने सोच विचार करके कहा कि राजन, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है कि देवतागण अपना यज्ञ का भाग स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, आपने तो इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी देवगण नहीं आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है, कारण ये है कि आपका कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप एक यज्ञ संपन्न कीजिए और उस समय भगवान को आमंत्रित कीजिए, जो कि वास्तव में इस जो यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। यज्ञ पुरुष का अर्थ क्या होता है? समस्त यज्ञों के भोग का भोक्ता। तो इस यज्ञ को जब आप भगवान श्री हरि के संतुष्टि के लिए करेंगे और उनको इस यज्ञ में आमंत्रित करेंगे यज्ञ के फल को स्वीकार करने के लिए, तो उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ में सारे देवता भी आएंगे, उनका अनुगमन करके आएंगे। इसलिए ये यज्ञ संपन्न आप कर लो। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता है, और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी होते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं, तो वो भी पीछे पीछे आते हैं। तो आप क्या कोई भगवद गीता या भागवत का श्लोक बता सकते हैं जिसमें ये साबित किया जाता है कि भगवान विष्णु ही यज्ञों के भोक्ता है? सारे यज्ञ भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए ही संपन्न किए जाने चाहिए। क्या अर्थ इसका?
भोक्तारम यज्ञ तपसम, भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं ही यज्ञ तपस यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं ही हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सर्व सब लोक का मैं ही ईश्वर हूँ और सबके हृदय सुहृद मैं ही हूँ। ये जब जानते तब एक व्यक्ति शांति को प्राप्त करते हैं।
तो ये विश्व शांति स्थापित करने के लिए ये त्रिविध मार्ग है। इसमें कौन सा पहला है? पहला ये जानना कि केवल भगवान कृष्ण ही भोक्ता है, और जो भी हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि वो ही भोक्ता है। दूसरा है कि वो सबके स्वामी हैं, सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और तीसरा कि सारे जीवों के वो शुभ चिंतक है, हितैषी है। तो ये तीन बातें जानना बहुत आवश्यक है। तो जब हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं तो फिर शांति नहीं हो सकती है, ना हमारे अंतःकरण में शांति हो सकती है, ना परिवार में, ना समाज में, ना देश में, ना विश्व में, ना पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी नहीं हो सकता है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं। तो ये पहला श्लोक है जिसमें कि ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है। दूसरा कोई श्लोक? पूरा श्लोक बोलिए। कौन कौन बोलेंगे? कौन बोलेंगे?
यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर
समाचर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है?
यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ का अर्थ कहिए यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञार्थ कर्मणो कर्म करना चाहिए, अन्यत्र लोकोयम लोक कर्म बंधन का बंधन।
तो यज्ञार्थात मतलब क्या है?
विष्णु के लिए, भगवान विष्णु का संतुष्टि के लिए यज्ञार्थात कर्म करना चाहिए, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अन्यत्र नहीं तो लोकोयम लोक कर्म बंधन कर्म में बंधन।
यज्ञार्थात कर्मणः, तो यज्ञ अर्थात, अर्थात मतलब क्या? अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ शब्द का एक अर्थ है अर्थ, मतलब मतलब। और एक अर्थ क्या है? हित, हित अर्थ। ठीक है, स्वार्थ जो बोलते हैं ना, स्व अर्थ, अपने हित के लिए जो है वो सोचना। तो अर्थ शब्द का दूसरा अर्थ है हित, और तीसरा तीसरा अर्थ है उद्देश्य। तो उद्देश्य मतलब और भगवत गीता के कौन से श्लोक से बोल सकते हैं? अर्थार्थी, अर्थ आर्थी, आर्थो अर्थार्थी, अर्थ के अर्थी, मतलब जो अर्थ को उद्देश्य बना के उसको प्राप्ति के लिए करना चाहते, और अर्थ का और एक शब्द है धन। तो इस तरह से अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो यज्ञार्थ, तो यज्ञ के लिए, यज्ञ के संतुष्टि के लिए, यज्ञ अर्थ, अर्थाय मतलब यज्ञ के लिए, यज्ञ के प्राप्ति के उद्देश्य से कर्मण है। तो हमारे सारे कर्म यज्ञ के संतुष्टि के लिए करने चाहिए, अन्यत्र लोक है अयम कर्म बंधन। तद अर्थम, उनके लिए कर्म कौन्तेय, तद तद मतलब उनके, कृष्ण भगवान अपने बोल रहे हैं, परम सत्य परमात्मा आदि की चर्चा कर। तद अर्थम कर्म, कर्म तो है कौन्तेय, उनके संतुष्टि के लिए, उनके लिए कर्म करो। मुक्त संघ समाचर, तो ऐसे काम करो इससे तुम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञार्थ, यज्ञ कौन है, क्या है, तो हमें यज्ञ के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो यज्ञ कौन है, यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, यज्ञों वही विष्णु हो। तो यज्ञ शब्द का संबोधन भगवान को भी साक्षात होता है, कभी कभी भगवान को भी संबोधित किया जाता है यज्ञ कह के, वो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञों के पुरुष हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, यज्ञों के भोक्ता हैं, और कभी कभी उनका नाम भी यज्ञ होता है। भगवान के एक अवतार भी हैं जिनका नाम है यज्ञ। तो यज्ञों वही विष्णु हो, तो यज्ञ ही विष्णु है। तो यज्ञ का और एक नाम है, भगवान विष्णु का और एक नाम है यज्ञ। तो भगवत गीता किसके पास है यहाँ पे, तो श्लोक खोलो, यज्ञार्थात का अर्थ पढ़ो
इंग्लिश में,
हाँ तो हिंदी में को अनुवाद कर लो।
श्री विष्णु के लिए यज्ञ, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
शब्दार्थ,
शब्दार्थ यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया।
एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया, मतलब यज्ञ शब्द विष्णु का और एक नाम है। तो यज्ञ अर्थात, यज्ञ अर्थात, यज्ञ अर्थात, तो भगवान विष्णु का नाम ही यज्ञ है। यज्ञों वही विष्णु हो, तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ठीक है। ये दूसरा श्लोक हो गया कि हमें भगवान विष्णु के लिए काम करना चाहिए, कर्म करने चाहिए, और इसी को यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि हम आहुति डालें, स्वाहा स्वाहा करके एक अग्नि आए और हम घी और तरह तरह के अन्य आहुतियाँ अर्पण करते जाए, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। परंतु भगवत गीता के चतुर्थ या चौथे अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, आपको पढ़ा है ना, भक्ति शास्त्री कितने भक्तों ने किया है, तो प्रकार कितने प्रकार अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए कि नहीं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन और कोई श्लोक बताओ जिसमें यह बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के लिए के यज्ञ भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाने चाहिए। जो भी हम करते हैं, जो भी, कौन सा श्लोक, यत् करोषि यत् जुहोषि, यत् करोषि यत् जुहोषि, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषव मदर्पण। तो इसका मतलब कौन समझाएंगे ये श्लोक का? यत करोषि, यत मतलब जो भी, करोषि मतलब
करते
हैं, मध्यम पुरुष करोषि जो करता है, दूसरे की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग करते हैं करोषि, जो भी तुम करोगे, जो भी तुम करो यत करोषि। फिर यत अश्नासी, अश्नासी का मतलब भोजन खाना, यत करोषि यद अश्नासी। फिर यद जुहोसी, जुहोसी मतलब देखो भगवत गीता खोल के देखो, यद जुहोसी शब्द का अर्थ क्या है?
अर्पित करते हो।
हाँ, यहाँ क्या लिखा है अर्थ? यद जुहोसी ददासी यत, ददासी मतलब
दान
के रूप, मुझे अर्पण करो दान के रूप में जो करते हो। फिर यह तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो, यह तपस्यसि कौन थे? तद कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके करो। जुहोसी मतलब यज्ञ, जो भी तुम यज्ञ आदि करोगे। क्या लिखा है?
यू ऑफर,
यू ऑफर, यू होसी। तो इस तरह से यहां पे हर एक यज्ञ शब्द का एक बहुत विस्तृत अर्थ बताया गया है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ ये नहीं है कि केवल अग्नि में आहुति अर्पण करना, परंतु जो भी हम कर्म करते हैं वो भी यज्ञ है। क्यों? यदि वो भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाए तो हमारा हर एक कर्म यज्ञ है। जैसे अभी खेती करते हो, वृक्षारोपण करते हो, बैलों की सेवा करते हो, रसोई करते हो, पढ़ाई करते हो, क्लास भागवत क्लास में सुनते बैठते हो, सुनते हो, बोलते हो, पठन करते हो, जप करते हो, निर्माण कार्य करते हो गोकुल धाम में, जो भी हम कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं? कृष्ण के संतुष्टि के लिए। इसलिए हर एक कर्म जो भक्त का होता है वो भी यज्ञ होता है, और खाते हैं वो भी यज्ञ ही है। किस लिए खाते हैं, क्या खाते हैं? पहले भोजन यज्ञ में अर्पण किया जाता है। कैसे? भगवान को भोग चढ़ा के, भगवान को अर्पण करके, उनके संतुष्टि के लिए उनको अर्पण करके, फिर वो यज्ञ के अवशिष्ट हम स्वीकार करते हैं। और भोजन जो ग्रहण करते हैं वो भी एक यज्ञ है। क्यों? अहम वैश्वानरो भूतवा, हमारे पेट में अग्नि है ना, जठर अग्नि। तो जब भी हम कुछ भी अग्नि में अर्पण करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं ना। तो यहाँ भी अग्नि है तो उसमें हम अर्पण करते हैं भोजन। इसलिए साधारण वैदिक सभ्यता में जो भक्त नहीं भी है वो हम वैश्वानरो भूतवा कह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं कि हम ये कृष्ण रूपी अग्नि जो हमारे पेट में है उसको हम अर्पण करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक यज्ञ है। यद करोषि यद अश्नासी यद जोसी ददासी, यद दान देना। हम भी कुछ अर्पण करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसके लिए देते हैं? कृष्ण के संतुष्टि के लिए देते हैं, ना कि हमारे पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, ना कि कुछ और प्राप्त करने के लिए। कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं। और तपस्या, तपस्या भी क्यों करते हैं? कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं, केवल अपने घमंड के लिए नहीं कि अभी सबको बताने के लिए देखो मैंने इतना तपस्या किया, मैंने इतना निर्जल किया, मैंने इतना एक पैर पे खड़ा हो गया एक हफ्ते के लिए। तो ये सब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, और नहीं कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं। हमारे भक्ति मार्ग में जो भी तपस्या है वो मध्यम वर्गीय तपस्या है, और वो एकमात्र कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होता है। इसमें कोई प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। तो जितने भी चीज़ें भक्तों के जीवन में हैं वो सब यज्ञ है, क्योंकि भक्त का जीवन ही यज्ञ है। हाँ, भक्त का जीवन क्यों यज्ञ है? क्योंकि वो प्रत्येक कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। उसका अस्तित्व ही कृष्ण के लिए है, वो सब कुछ भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करता है, और सोचता है कि कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा मैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कृष्ण सेवा बिना सब कुछ व्यर्थ है, निष्फल है। इसलिए भक्त का जीवन ही यज्ञ है। अच्छा, ये बात बताइए कि कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर क्या है, मालूम है क्या? कौन बताएंगे? हाँ,
कर्म योग में हम शुद्धिकरण के लिए करते हैं, भक्ति योग में भगवान का प्रसन्न के लिए करते हैं, और दोनों में भी कृष्ण को बीच में रख के ही करते हैं। और कर्म योग में हम लोग नियम को संपूर्ण तरह से हम पालन करते हैं। हाँ, भक्ति योग में भी नियम से करते हैं, मगर हमारा हृदय डाल के रुपये इधर हो। कर्म योग में बुद्धि से या गुरु का आज्ञा अनुसार हम लोग पालन करते हैं।
ठीक है, और जहाँ तक फल की बात है, हमारे कर्मों के फल की बात है, इस दृष्टि से कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है?
कर्मयोग में वो कार्य करते हैं और उस फल को ले स्वीकार करके भगवान को ऑफर करते हैं।
लेकिन किस प्रकार से कार्य करते हैं?
अपना अपेक्षा करके, फल का अपेक्षा करके, और वो फल भगवान को ऑफर करते
हैं। किस तरह के कर्म करते हैं? कौन बोलता है कि ऐसा कर्म करो? लेकिन ठीक लाइन में चल रहे, आगे बोलो फिर।
और भक्ति योगा में वो भक्त जो है उनका कार्य ही भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं,
इसलिए
वो फल का अपेक्षा नहीं करते हैं।
ठीक है, और स्पष्टता से समझाता हूँ। कर्मयोग में क्या होता है, कर्मियों के भी स्तर होते हैं। उसमें सबसे पहले स्तर में कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से निरासक्त होता है कि ये फल मैं कर्म कर रहा हूँ कर्म का फल है, इसका भोक्ता मैं नहीं हूँ, इतना वो जानता है। इसके भी निम्न स्तर में उसको कर्मों के फलों से थोड़ी आसक्ति होती है, पहला स्तर। फिर दूसरे स्तर में वो निरासक्त हो जाता है कि मुझे कर्मों के फलों से आसक्ति नहीं है, मैं भोक्ता नहीं हूँ मेरे कर्मों के फल को भोगने के लिए। परंतु कौन भोक्ता है? यदि मैं नहीं हूँ भोग करने वाला मेरे कर्मों के फल का, तो फिर कौन भोग करेगा, ये नहीं मालूम उसको। फिर कर्मियों के तीसरे स्तर में उसको पता चलता है, यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। ये श्लोक जो है ये कर्मयोग के लिए है। इसमें व्यक्ति जानता है कि ये कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, ये जो फल है ये कार्यों में, ये कार्यों के फल मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा, मैं तपस्या करूंगा लेकिन फल उनको अर्पण करूंगा। तो कर्म जो भी व्यक्ति करता है कर्मयोग में, वो अपने इच्छा के अनुसार करता है, मतलब शास्त्रों के सीमाओं के भीतर करता है, शास्त्रों के सीमाओं के बाहर नहीं करता है। लेकिन शास्त्रों के सीमाओं के भीतर में भी वो चयन करता है कि मैं ऐसे काम करूंगा, मैं वैसे काम करूंगा, मैं ऐसे व्यवसाय करूंगा, मैं ऐसे नौकरी करूंगा, मैं ऐसे परिवार का भरण पोषण करूंगा, लेकिन शास्त्रों के नियमों के भीतर अपनी इच्छा का प्रयोग करके वो कर्म को करता है और फिर सोचता है कि ये कर्मों के फल मैं भगवान को अर्पण करूंगा, ठीक है, तो ये कर्मयोग हुआ। परंतु भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में भक्त वो कर्म ही भगवान को समर्पित करता है, इसलिए कर्म के फल को भगवान के लिए अर्पण करने का कोई बात ही नहीं आता। आप समझ रहे? जैसे कोई जप, कर्मयोगी जप कर रहा है जो भक्त नहीं है, और वो कहता है कि मैं कुछ जप करूंगा और ये जप का फल मैं भगवान को अर्पण करूंगा, क्योंकि इससे मैं थोड़ा सात्विक हो जाऊंगा, जीवन में शांति मिलेगी इत्यादि आदि। तो वो जप करता है और सोचता है कि जप करने से जो भी मुझे पुण्य मिलेगा, जो भी मुझे लाभ, मैं उसका फल भगवान को अर्पण करूंगा। परंतु भक्त क्या सोचता है? मैं जप ही भगवान के संतुष्टि के लिए करूंगा, तो जप के फल का कोई सवाल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? तो जप ही जो कार्य है वो ही मैं भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहता हूं, तो इसलिए जब वो जप ही भगवान के संतुष्टि के लिए किया जा रहा है तो फिर जप के फल का प्रश्न कहाँ आता है? तो वो भी भगवान के हाथ में ही है ना, भगवान जो भी करना चाहेंगे वो करेंगे। तो ये अंतर होता है। भक्त अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, कर्मयोगी अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, लेकिन भक्त कृष्ण के इच्छा के अनुसार काम करता है। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क है कि कर्मयोगी कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करता है और भक्त कर्म को ही अर्पण करता है भगवान को, कर्म के फलों को नहीं। समझ ला? कोई समझाएंगे ये दो अंतर क्या है? हाँ, और कोई समझ ला? सच्ची पुत्र को समझो हमला सर्वाना। ठीक, तो दो अंतर कौन से हैं? वैसे कई अंतर हैं, मैं दो की बात की, दो अंतर कर्मयोग और भक्ति योग में क्या है अंतर?
कर्मयोग में जो ये है, कर्मयोगी वो अपने इच्छा से कार्य करता है, फल को भगवान को।
तो जो कर्मयोगी कार्य करता है कुछ भी करता है कि कुछ ध्यान में रखता है?
शास्त्र के नियम के,
शास्त्रों के नियम के भीतर ही कर्म करता है, लेकिन जो चाहे वो करता है। और दूसरी ओर
भक्त जो है अपने इच्छा से कार्य नहीं करता, गुरु का हो,
हाँ, गुरु कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करता है, ये पहला अंतर। दूसरा बोलो, फल फल क्या? अंबा अंबा क्या?
दूसरा ये कि जो कर्मयोगी है वो कर्म का फल को भगवान का दया चाहता है, लेकिन भक्ति योग जो कर्म को ही भगवान को।
तो दोनों में अंतर है कि नहीं? इसलिए भक्त के लिए हर कार्य ही यज्ञ है, क्योंकि वो कार्य ही भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है। लेकिन जो कर्मयोगी होते हैं उनके लिए यज्ञ का मतलब क्या होता है? कर्मों के फल को अर्पण करना भगवान को, ठीक है। तो इसलिए भक्त के जीवन में सब कुछ यज्ञ ही है, यज्ञमय जीवन है भक्त का। तो जो कर्मकांडी आदि होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, उनके लिए ये सब महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए और चौथे अध्याय में भी है, लेकिन अभी समय नहीं हमारे पास, आप पढ़ लो चौथे अध्याय में, आज के दिन थोड़ा समय मिलेगा तो पढ़ो, फिर दोपहर में मिलेंगे तो थोड़ा कोई हमको समझाना कि किस प्रकार के यज्ञों का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण करते हैं या चौथे अध्याय भगवद गीता में। अनेक प्रकार के यज्ञ है जिनकी बात करते हैं भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सर्वोच्च यज्ञ है क्योंकि इससे भगवान सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। संकीर्तन यज्ञ, अभी और एक यज्ञ हम करने जाएंगे, ठीक है।
गोकुल धाम का तो इसमें भी हम क्योंकि गुरु परंपरा से आते हुए ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो ये भक्ति योग में ये हो जाता है। लेकिन कोई सपोज कोई जैसा कोई साधु व्यक्ति है जिनका परंपरा नहीं है, अगर खुद सपोज करें कुछ कार्य करेंगे और बोलेंगे मैं भगवान के लिए ही मैं करूँगा कृष्ण के लिए, और अगर जो प्रोजेक्ट ऐसा किए तो वो भी ये में आता है कि मतलब भगवान को संतुष्टि के लिए हो सकता है कि
नहीं, वो निर्भर करता है ना कि उसकी भावना क्या है पहली बात, और वो किस चीज़ को अर्पण करना चाहता है। कोई बोलेगा मैं शराब का कारखाना खोलूँगा, इसको भगवान के लिए अर्पण करूँगा, हाँ तो इसमें थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। अर्पण करने की भावना अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ को अर्पण करना चाहते हो वो अर्पणीय नहीं है, वो अर्पण नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए, हाँ। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो हम अर्पण करना चाहते हैं वो अर्पणीय होना चाहिए, और दूसरा बात कि हमारी भावना भी सही होनी चाहिए, अधिकृत होनी चाहिए। यदि गुरु कृष्ण के आदेश के अनुसार वो सब किया जा रहा है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है कृष्ण के आदेश के अनुसार, तो फिर वो भक्ति कहलाएगा। तो यदि सही समझ से कर रहे हैं, या शिक्षा भी यदि ले रहे होंगे, परंपरा को स्वीकार करने का केवल यह मतलब नहीं है कि वो दीक्षा हुआ है, सही परंपरा से शिक्षा भी उनको यदि प्राप्त हो रहा है और उस शिक्षा के अनुसार वो सही कार्य कर रहा है, तो फिर वो भी भक्ति योग ही हो जाता है, ठीक है। आगे चल के वो दीक्षा लेगा, लेकिन शिक्षा के अनुसार भी जो अधिकृत ढंग से किया जाता है वो भी भक्ति ही है। परंतु यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि शिक्षा भी नहीं है उसको, लेकिन उसके हृदय में प्रेरणा हो गया कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये करूँगा मैं, ये सही है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि उसने कार्य सही ढूंढा, जो अधिकृत कार्य को करके भगवान को अर्पण करना चाहा, भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहा, उसकी समझ क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि भगवान उसको देखेंगे। फिर भी भावग्राही जनार्दन, पूतना जैसे राक्षसी को भी का उन्होंने भाव स्वीकार किए कि ये माँ की तरह आई है दूध पिलाने के लिए। दंड तो मिला पूतना को, बहुत दर्द सहन करना पड़ा, प्राण त्यागना पड़ा उसको, परंतु अंततः जो एक मातृत्व का भाव है उसको भगवान ने देखा कि ये कर रहे, ठीक है, ठीक है, हाँ भी प्रसाद पाते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोकुल धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।